बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही सदन ने वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ का प्रावधान करने वाले वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से मंजूरी दी। इससे पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को भी सदन ने खारिज कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:03 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 12:05 पर दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2:25 पर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दल के सदस्यों ने SIR पर चर्चा की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि SIR का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और लोकसभा के नियमों और परंपराओं के अंतर्गत इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के 80 साल पूरा होने का उल्लेख किया तथा विनाशकारी हथियारों से मुक्त विश्व को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। इसके बाद सदस्यों ने कुछ क्षण मौन रखकर 80 वर्ष पूर्व की इस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। श्री बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और सवाल करने लगे कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं। उल्लेखनीय है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 11:03 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इसी दौरान विपक्ष के सदस्य SIR के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद पीठासीन सभापति सैकिया ने आसन के समीप नारे लगा रहे विपक्षी सांसदों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सदन में बैनर पोस्टर लेकर आना ठीक नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर सैकिया ने दोपहर 12:05 पर कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे जब शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष SIR का मुद्दा उठा रहा है। वो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सदन की कार्य प्रक्रियाओं के नियम और परंपराओं के अंतर्गत यहां इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के पास आकर SIR के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। शोर शराबे के बीच ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करने को कहा। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। इसके बाद पीठासीन सभापति ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रियाओं के नियमों और परिपाटी के अंतर्गत इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। श्री रिजिजू ने सदन के कामकाज के नियम 352(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन के किसी सदस्य को यहां ऐसे विषय का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है जिस पर अदालत ने निर्णय लंबित रखा है। उन्होंने कहा कि SIR का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग के कर्तव्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा है, जो एक स्वायत्त निकाय है। उन्होंने कहा कि इस सदन में पहले भी यह तय हो चुका है कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े मुद्दों को यहां नहीं लाया जा सकता। श्री रिजिजू ने कहा कि 14 दिसंबर 1988 को जब एक सदस्य ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने की कोशिश की थी, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने व्यवस्था दी थी कि निर्वाचन आयोग के कामकाज और फैसलों पर सदन में टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष जाखड़ ने कहा था कि मैं नियम नहीं तोड़ सकता। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि क्या वे इस सदन के स्थापित नियम को तोड़ना चाहते हैं, संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करना चाहते हैं, विपक्ष इस देश के नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं। श्री रिजिजू का कहना था कि विपक्ष के सांसद मानसून सत्र के पहले दिन से इस सदन के कामकाज के नियमों और सदन में स्थापित परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष के आग्रह पर सरकार खेल संबंधी दो विधेयकों के आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध होने के बाद भी उन पर जोर नहीं दे रही है और उन्हें बाद में लिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध खेल से संबंधित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति के विचार के लिए भेजा जाए। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के सदस्य संसद के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में आज वाणिज्यिक जलप्रोतों के स्वामित्व के पात्रता मानदंडों का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को भी सदन ने खारिज कर दिया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन ब्रजेश चौटा और मुकेश दलाल ने हिस्सा लिया। चर्चा पर सोनोवाल के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के कुछ सांसदों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होते ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। ये विधेयक केंद्र सरकार को भारत के भीतर या जल क्षेत्र में बिना राष्ट्रीयता वाले जहाजों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है। यदि ऐसा जहाज कानूनी रूप से किसी देश का झंडा लगाने का हकदार नहीं है या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदरगाहों तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को आज राज्यसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस विधेयक पर संसद की मोहर लग गई। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने तथा इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने इसी मुद्दे को लेकर दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। सदन ने हंगामे के बीच ही विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करते हुए समुद्री माल परिवहन विधेयक को पारित कर दिया। पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता ने विधेयक पारित होने के बाद भी विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे विधायी कार्यों की सूची में उल्लिखित तटीय जहाजरानी विधेयक 2025 पर चर्चा नहीं हो सकी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हंगामे के बीच ही राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय व्यय का ब्यौरा सदन में रखा। पोत परिवहन राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए पिछले एक दशक में मोदी सरकार के नेतृत्व में बंदरगाह और पोत परिवहन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक दशक में बंदरगाह क्षमता का तेजी से विस्तार हुआ है और इस कानून के बनने से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इस समय लागू कानून 100 साल पुराने पहले बना था और वो विदेशी मानसिकता पर आधारित है। नया कानून भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सहायक होगा। टीएमसी एम के जी वासन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उनके राज्य तमिलनाडु में 3-3 बंदरगाह हैं जिन्हें इससे फायदा होगा। उन्होंने बंदरगाह सुविधाएं बढ़ाने में सहायता के लिए सरकार की प्रशंसा की। इससे पहले सुबह शून्यकाल के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर शराबा किया। उपसभापति हरिवंश ने जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव को 35 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उनके इतना कहते ही विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी सीट से उठकर जोर शोर से कुछ कहते हुए आसन की ओर आने लगे। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन ने पूर्व राज्यपाल और सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी। श्री हरिवंश ने सदन में आते ही कहा कि उन्हें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक का कल निधन हो गया। संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह है और सदन में अब तक एक दिन भी शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नकाल की कार्यवाही भी केवल एक दिन और वो भी हंगामे के बीच ही हुई थी। सदन में जो भी थोड़ा बहुत विधायी कामकाज हुआ है वो भी हंगामे के बीच ही निपटाया गया है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सदन के पटल पर रखे गए। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से 12,230 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पदों को भरा गया है। इनमें से 1,616 अनुसूचित जाति के हैं, 803 अनुसूचित जनजाति के हैं और 2,624 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद शामिल हैं। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस वर्ष मई से महिलाओं के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम यशोदा एआई को चला रहा है। इसके अलावा इसे डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के साथ महिलाओं को साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की लगभग 2,500 महिलाओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश भर में कुल 8,37,000 सहकारी समितियां शामिल हैं। इनमें से देश भर में 6,45,000 सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इन समितियों में 31 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।